संग्राम सिंधु गाथा प्रथम खंड अर्थला लेखक विवेक कुमार विधान 6300 वर्ष पहले भी सूर्य उसी प्रकार उगा करता था जैसे कि आज। उगते सूर्य के प्रकाश में विधान ने अपने शरीर को देखा। पिछले 6 वर्षों के कठिन शस्त्राभ्यास ने उसके शरीर को बलिष्ठ बना दिया था। उसका वक्ष चौड़ा, भुजाएं स्नायुबद्ध, पिंडलियां मजबूत तथा जंघाएं ठोस हो गई थीं। इतने वर्षों में उसने लगभग हर प्रकार के शस्त्र चलाना सीख लिया, विशेषकर तलवार और भाला। चढ़ते सूर्य का नरम ताप उसके शरीर को गुनगुना आराम पहुंचा रहा था। वो आंगन में खड़ा होकर मां की पूजा समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। मां आंगन के मध्य स्थापित तुलसी पर जल चढ़ा रही थी। उनकी पूजा समाप्त होने में अभी समय था। उसने सोचा, जब तक मां की पूजा समाप्त होगी तब तक नए घड़ों को बाहर निकाल दूं। वो रसोई की बगल वाली कोठरी से मिट्टी के नए घड़ों को निकालकर आंगन में रखने लगा। पूरे गांव में विधान के पिता ही एकमात्र कुंभकार थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उसकी मां ही घड़े बनाती थी। मां ने भरसक प्रयास किया कि वो भी उस कार्य में लग जाए, परंतु उसमें योद्धा बनने की उत्तेजना समाई हुई थी। योद्धा बनकर ही वो अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य पूरा कर सकता था। उसने अंतिम घड़ा भी बाहर निकालकर रख दिया और पालथी मारकर वहीं बैठ गया। मां की पूजा समाप्त हो चुकी थी। तुलसी के सामने प्रार्थना करने के पश्चात उन्होंने सूर्य को अर्घ दिया, मंत्र पाठ किया, तुलसी की कुछ पत्तियों को तोड़ा और लाकर विधान के मुंह में डाल दिया। मां पुनः मंत्र बुदबुदाते हुए रसोई में चली गई। मां के रसोई में जाते ही आंगन के बाहर एक बैलगाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक मोटा ताजा जंतु प्रकट हुआ। दो पैरों तथा विशाल उदर वाले उस जंतु ने अपने सिर पर पतले सरकंडों से बनी एक छोटी डलिया को उल्टा करके पहन रखा था। उसके एक हाथ में लकड़ी का लट्टू और दूसरे हाथ में सूत की पतली डोरी थी। वो शांत भाव से बिना कुछ बोले विधान के पास आकर खड़ा हो गया। ये विधान का चचेरा भाई सत्तू था। सत्तू ने लट्टू पर डोरी लपेटी, फिर भूमि पर पटक कर झटके से डोरी खींच ली। लट्टू सपाट भाव से नाचने लगा। उसने डोरी से फंदा बनाकर लट्टू को हवा में उछाला और अपनी दाई हथेली पर ले लिया। लट्टू पुनः उसी सपाट भाव से घूमने लगा, फिर बाएं हाथ से सिर की डलिया उतारकर वो धीरे से विधान के समीप बैठ गया। कुछ क्षणों तक नाचते लट्टू को घूरने के बाद सत्तू ने कहा, तो अंततः वो क्षण आ ही गया। विधान ने एक मुस्कान के रूप में हामी भरी, तो गुरु दक्षिणा में क्या मांगा है गुरु जी ने? सत्तू ने पूछा। गुरु काण ने इस संदर्भ में कभी कोई संकेत नहीं दिया, विधान ने कहा।
वैसे तुम्हारी क्या इच्छा है भैया?
अपनी इच्छा के बारे में सोचकर विधान का ताप बढ़ने लगा। कुछ क्षणों तक चुप रहने के बाद भौहें सिकोड़कर बोला, टिकटू। कुछ क्षणों तक चुप रहने के बाद भौहें सिकोड़कर बोला, मेरी इच्छा तो उस नीच सुदास का मुंड है, परंतु गुरु काण तो प्रतिशोध को विष समझते हैं। सत्तू को लगा कि उसने गलत विषय छेड़ दिया, अतः विषय बदलते हुए कहा,
भैया तुम व्यर्थ में अपना ताप मत बढ़ाओ, ये बताओ कि भोजन में क्या बना है? घर से खाकर चला था, परंतु लगता है उदर में कोई बैठा है जो उदर को तृप्त ही नहीं होने देता।
विधान शांत रहा। उसने स्वयं को स्वस्थ किया, उगते सूर्य की ओर देखा, फिर मुस्कुराने का प्रयास करते हुए कहा, तुम्हारा प्रिय भोजन बना है।
निमोना!
सत्तू ने प्रसन्नता से आंखें बड़ी करते हुए कहा, हाँ, पेट भरकर खाना। विधान उसकी पीठ को ठोंक कर उठते हुए बोला। विधान के ठोकने से लट्टू हथेली से गिर पड़ा। सत्तू ने लट्टू उठाकर अपनी धोती में बांध लिया। विधान ने आंगन में नीम के वृक्ष से बंधी अपनी दुलारी गाय शांति को चारा डालते हुए पूछा, आज प्रातः ही सिर पर डलिया धारण कर कहां जा रहे हो?
मां ने महुआ बीन ने भेजा है। मां पिताजी को भड़काती रहती हैं कि मैं दिन भर केवल लट्टू न